वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे करके हमारे कोंकण से आए हुए सब नर्सिंग स्टाफ का भी स्वागत है जो आज हमारे हॉस्पिटल में फर्स्ट डे आए हैं एज नर्सेस। और जैसे हमारा अस्पताल सबको भगवान के नाम के भेंट देता है तो इनका ये भाग्य है कि आज पहले दिन ही उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का मौका मिला। पहले दिन ही उनको हरे कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने का मौका मिला। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि योगी लोग अनंत जन्मों तक तपस्या करते हैं और ज्ञान मार्गी लोग अनेक जन्मों तक ज्ञान प्राप्त करते हैं और ध्यानी लोग तपी लोग कर्मकांडी लोग अनंत जन्मों तक कर्म कांड करते हैं अच्छा फल प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान ने ऐसा कहा है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। उन्होंने कहा है कि बहुत जन्मों तक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो जो जितना ज्ञान प्राप्त किया है बहुत जन्मों तक उसका एक सार मन में पैदा होता है। समझो आपने अभी 50 साल लकड़ी का बिजनेस किया तो 50 साल के अंत में आपके मन में कुछ अनुभव आएगा ना कि भाई लकड़ी का बिजनेस में ऐसा ऐसा होता है एक उसका सार। मतलब आप 50 साल के बुजुर्ग आदमी को बोल के मिलेंगे कि पापा आपने 50 साल बिजनेस किया आपका क्या अनुभव है तो बोले बेटा कभी भी लकड़ी गीली नहीं खरीदना है ऐसा कुछ तो भी एक बड़ा लाइन आपको बता देंगे वो। मैं आपको एक ऐसा ही बोल दिया लेकिन हर एक आदमी अपने अपने काम में अपने अपने जगह पर आपको एक कोई अनुभव बताएगा कि हमारा इतने साल का ये सार का अनुभव है कपड़े का बिजनेस में ऐसा होना चाहिए। या कोई 75 साल का आदमी है शादी होकर 50 साल हो गए उसके तो बोले पापा आपका क्या क्या कहना है आपको 50 साल शादी होने के बाद में क्या कहना चाहेंगे तो बोलेगा मेरा एक ही कहना है बीबी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ भी बड़ी बात बता देगा आपको। उसी तरह से कई जन्मों तक जन्मों के बाद में ये शास्त्र का ज्ञान लोग प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान बहुत सारा प्राप्त करने के बाद में मन में एक ऐसा उसका सारांश कंक्लूजन हाँ अनुभव पैदा होता है। वो क्या अनुभव है वासुदेवम सर्वमिति कि हाँ इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है उसका कंक्लूजन क्या है उसका निर्णय क्या है फाइनल क्या बात है उसके अंदर कि वासुदेव जो कृष्ण हैं जो भगवान है वही सब कुछ है। सर्व वेदेशु दृश्यते, मतलब सर्व वेदों को छान मार के आप निचोड़ेंगे तो क्या सार गिरेगा उसका, कि भगवान ही सर्व सब कुछ है और ये सब कुछ करके उनको ही प्राप्त करना है। यहाँ बैठकर आप सब लोग नर्स लोग हो, घर में बैठकर रोज़ नर्स की किताब पढ़ते हो, पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर कैसे करना है और आईसीयू में नर्सिंग केयर कैसे करना है और मेडिकल सर्जिकल में कैसे करना है और डायलिसिस में कैसे करना है, और कभी आप वार्ड में उतरेंगे नहीं, खाली घर पर ही बैठ के पढ़ते रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। आप लोग जो पढ़ेंगे उसको जीवन में उतारेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या पढ़ रहे हो तभी जाकर आपकी पढ़ाई जो है परिपूर्ण होगी, और जो आप पढ़ रहे हो जब आप उसको उतारते हो तो आपको एक अनुभव आता है कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए। फिर आपको क्या बोलते हैं, ये नर्स बड़ी एक्सपीरियंस नर्स है और बड़ी कुशल भी नर्स है, ऐसा बोलते हैं ना, एक्सपर्ट भी है और एक्सपीरियंस भी है। इस तरह से बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो ज्ञान बहुत हो गया उसका, वो क्या बोलता है, उसका सार एक ही है कि भगवान को प्राप्त करना है। ये सारे वेदों में लिखा है, ये सब इतना पढ़ाई करके जानना किसको है, वो भगवान को जानना है। लेकिन कैसे जानना है, समझ तो गए कि जानना है उनको, तो जब जाकर वो कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आती है कि इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसा आत्मा बहुत दुर्लभ होता है। पहले तो कहते हैं कि ऐसा आत्मा महात्मा होता है, हम तो महात्मा किसी को लगा देते हैं आजकल, लेकिन महात्मा उसकी व्याख्या है जो भगवान को समझ चुका है, उसको महात्मा कहते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन को महात्मा कहना गलत बात है, एक्चुअली वो पॉलिटिशियन है, होगा महान, लेकिन पॉलिटिशियन महान आदमी है वो। लेकिन सच्चा महात्मा जो है, जिसको भगवान महात्मा पुकारते हैं, वो क्या कहते हैं, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव ही सब कुछ है, इस बात को जानता है, वो बड़ा दुर्लभ है, वही महात्मा है, ऐसे स्वयं भगवान कहते हैं। और दोबारा एक व्याख्या करते गीता में, महात्मनस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृति आश्रितः। और महात्मा की व्याख्या भगवान ने क्या की है, कि महात्मा वही व्यक्ति है जो मेरी दैवी शक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, महामाया का आश्रय ग्रहण नहीं करता है। माया माया मतलब क्या, दुनियादारी का आनंद, दुनियादारी का भोग, नशा, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ खेलना, यहाँ का पैसा इकट्ठा करना, यहाँ का पद अधिकार प्राप्त करने का मेहनत करना, दूसरे को दबा के आगे बढ़ना, ये सब महामाया का प्रभाव है। लेकिन दैवी प्रकृति का प्रभाव क्या है, ये सब दुनियादारी का आकर्षण छोड़कर भगवान के चरणों में और भगवान के भक्तों के चरणों में सेवा देना, ये दैवी प्रकृति का लक्षण है। तो भगवान कहते हैं कि महात्मा वही है जो मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करता है, वो महात्मा है। और ऐसे महात्मा लोग क्या करते हैं, अर्जुन पूछते हैं, अरे आपने तो व्याख्या कर दिया, मुझे बताओ कि ये महात्मा लोग चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, करते क्या है, इनका व्यवहार क्या होता है, ये कैसे जीते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये महात्मा लोग जो है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। ये कैसे होते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तन तो मतलब मेरे ही बारे में बात करते रहते हैं हमेशा। जैसे आपके घर में बच्चा हो गया ना, समझो किसी घर में नया नया बच्चा है क्या, एनीबडी हैज न्यू चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, नहीं अभी कोई किसका नहीं है। लेकिन मैंने देखा है जिसके घर में नया बच्चा जन्म लेता है ना, तो दिन रात उस घर में केवल उस बालक के बारे में बात होती है और कोई बात ही नहीं होती। अभी सोया है, अभी उठा है, अभी रो रहा है, अभी पॉटी किया है, अभी ड्रेस चेंज किया है, अभी हिलेगा, अभी उठेगा, अभी स्नान कर दिया है, अभी सोने का समय हो गया है, यही है। कल मैं गया था मेरे मौसी के घर पे, उसको एक पोती हुई है, तो 2 घंटा हम लोग गए थे मौसी को मिलने के लिए, लेकिन 2 घंटा केवल पोती के गौरव सुनने में गया, अच्छा लगा, मतलब बुरा लगा नहीं, लेकिन केवल मौसी, मौसी का हस्बैंड, मौसी की बहू और घर में जितने लोग थे, उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की ओर वो बालक था। और अभी नहीं, अभी चलेगा वो बहुत समय तक, अभी तो 5 महीने हुए हैं, दिन रात वो खिलौना लेकर सब लोग खेलते रहते हैं उसके साथ में, दिन रात उसके दिमाग में वही रहता है, बालक बालक और बालक। तो जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, 50, 60, 70 साल के हो गए, बोले क्या पागल हो गए क्या, यही धंधा है दिन में, यही बालक के ऊपर बात करना है। लेकिन उनका प्रेम है बालक के ऊपर, जिस पर प्रेम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसकी नई नई शादी होने वाली, एंगेजमेंट हो चुका है, उस लड़की को आप मिलेंगे ना तो केवल अपने होने वाले पति के बारे में वो बात करती रहती है, बार बार। वो यहाँ काम करते हैं, यहाँ पढ़े लिखे हैं, इस घर में रहते हैं, उनका इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, उनकी ये गाड़ी भी है, वो यहाँ पर घूमने गए थे, घर में गए थे तो ये खा के आए, हमारा एरिया में ये है वो है। वो पति के बारे में दिन रात बातें करते रहेंगे, बच्चा होने पर बच्चे के बारे में बात करेंगे, लेकिन जिस समय जो मन में सबसे बड़ा आकर्षण है और प्रेम है उसके बारे में बात करते रहेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः। इसका मतलब महात्मा लोग कौन है, जो निरंतर भगवान के बारे में बात करते हैं। अरे भगवान जब गोकुल में थे ना तो दिन रात गोपियों के और ब्रजवासियों के मुख में केवल एक ही कहानी थी, बोले कन्हैया क्या कर रहा है, आज कहाँ गया है, कौन से वन में गया है, कहाँ मुरली बजा रहा है, कहाँ मक्खन चोरी करने गया है, कहाँ गाय का दूध पीने गया है, कहाँ बछड़े को छोड़ दिया और गाय के पीछे लगा दिया है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ गुल्ली डंडा खेल रहा है, कहाँ नदी में कूद रहा है, कल क्या किया था, आज क्या करने वाला है, यही बातें करते हैं ब्रज में दिन भर। क्योंकि ब्रज का जो सितारा है वो एक कृष्ण है, और दिन रात सब लोग कृष्ण के बारे में बात करते रहते हैं। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो योगियों को, ध्यानियों को, तपियों को, कर्मकांडियों को अनंत जन्म तक प्राप्त नहीं होता है, वो भक्तों को प्राप्त होता है। वो क्या है, भगवान का नाम, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद आएगा वो, इसलिए दोहरा रहा हूँ। तो सार क्या है, ऐसे कहा गया है कि अनंत साल जन्मों तक योग करने के बाद, अनंत जन्मों तक ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अनंत जन्मों तक सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी लोगों को वो भगवान के चरणों का निकला हुआ एक किरण भी नज़र नहीं आता है। उनका दर्शन तो दूर रखो, उनके चरणों से जो अनेक किरण निकलते हैं, हजारों लाखों प्रभावी किरण निकलते हैं, उन किरणों का दर्शन भी नहीं होता है, उनका दर्शन तो दूर रह गया। और वही भगवान जो है, जो योगियों के लिए इतने दुर्लभ हैं, वो अपने भक्तों के इशारे पर नाचते हैं, दर्शन तो देते ही हैं लेकिन नाचते भी हैं उनके इशारे पर, उनके गुलाम बन जाते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम एव अतएव शांत। मतलब इतने योगी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्या करने वाले हैं, सब लोग अशांत रहते हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ ना कुछ कामना होती है, बड़ा सिद्ध बाबा बनने की, महात्मा बनने की, विरक्त बनने की, कुछ ना कुछ कामना होती है। लेकिन भक्त जो होता है वो कभी भी मन में कामना रखता नहीं है, वो निष्काम रहता है, इसलिए हमेशा शांत रहता है, विचलित अस्वस्थ रहता नहीं है वो कभी भी। तो ये सब क्यों होता है, ये सब इसलिए होता है कि सब लोग भगवान के नाम का सहारा लेते हैं, भगवान के गुणगान का सहारा लेते हैं। ऐसे कहा गया कि आपको जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी चिंता हो, परेशानी हो, आप लोग त्रस्त हो, दुखी हो बहुत जीवन में, पता नहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, कोई उपाय नहीं दिख रहा है, ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गए पूरा, आप समझो वैफल्यग्रस्त हो गए, उस समय आप प्रयोग करके देखिए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप प्रयोग करके देखिए, याद रख के ऐसे बड़ी चिंता के समय भगवान का किताब खोलिए और भगवान की कथा पढ़िए, या भगवान की कथा सुनिए, या किसी ने कही हुई है, रिकॉर्डिंग किया हुआ है उसकी कथा आप रिकॉर्डिंग में सुनिए, या खुद पढ़िए, या तो माला उठाइए और जोर जोर से भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ये अनुभव होगा कि तुरंत आपका दुख कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो, आपको छुएगा नहीं, वो दूर चला जाएगा आपसे, आप निश्चिंत हो जाएंगे। क्योंकि भगवान का नाम जो है ना, ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है। कपड़ा आप धोते ना ऐसा, तो ऐसा करते ना आप निचोड़, उसका पूरा निकाल लेते हैं पानी आप, तो सारे शास्त्रों को लेकर निचोड़ेंगे ना आप, तो क्या लिखा है, इति षोडशकम नाम नाम कलि सर्वकल्प कल्मश नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेश दृश्यते। सभी वेदों में छान मारने के बाद में ये नज़र आ रहा है कि भगवान का नाम जो है यही सर्वे सर्वा है। नतः परतर उपाय, और कोई अन्य उपाय नजर नहीं आ रहा है। सब ढूंढा, सभी कोने कोने में जितना शास्त्र है, वेद है, वो सबको ढूंढने के बाद, रिसर्च करने के बाद में ये पता लग रहा है कि भगवान के नाम के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। क्या करने के लिए? अगर कलयुग के दोषों को, पीड़ाओं को, वेदनाओं को, तकलीफों को, परेशानियों को अगर नष्ट करना है तो और कोई उपाय नहीं। और हमारे ये नर्सेस कोंकण विभाग से आए, गांव से ANM करके, और पहले ही दिन उनको भगवान का नाम मिल गया, भगवान के नाम का कीर्तन मिला, भगवान के नाम का उन्होंने बैठ के सिखाया उनको प्रेम से, इतना अच्छा लग रहा था देख के। हाँ, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा तो क्या मिल रहा है आपको, ये अनंत जन्मों के परिश्रम का फल है। ये कोई ऐसा बाय फ्लूक नहीं है, कोई बाय चांस नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है ये। अरे बाय द वे आ गए थे, बाय द वे मिल गया, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। देयर इज़ नो एक्सीडेंट, सब भगवान की इच्छा से होता है। हमको लगता है एक्सीडेंट है, वो योगा योग ऐसा लगता है, लेकिन योगा योग नहीं होता है, वो सब कुछ भगवान के निर्देश में होता है, जब भगवान की इच्छा से होता है। कुछ लोग उसको समझते हैं और उसको गंभीरता से लेते हैं, कुछ लोग समझते हैं ये तो योगायोग था, बाय कोइंसिडेंस ऐसा लगता है कुछ लोगों को, और वो छोड़ देते हैं उसको। हो सकता है हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो रोज़ भगवान का नाम सुनते हैं, उनको बोर हो गया होगा, क्या है रोज़ हरे कृष्णा, कोई और तो कोई गीत गाओ, कोई और कोई गीत नहीं, क्या एक गीत है क्या, ऐसा किसी को लगता होगा। लेकिन जो अनेक गीत गा चुके हैं उनका नतीजा यही हुआ है कि वो समझते हैं कि अभी आखिरी गीत यही है सबसे। अनेक गीत गा लिए लेकिन उनके कान तक नहीं पहुंचे, अब ये गीत जो है ये जब गाएंगे तो उनके कान तक तुरंत पहुंचेगा, वो क्या है, वो उनका नाम। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग का पूरा आधार जो है ना वो भगवान का नाम है। इसलिए पागल से पागल भी व्यक्ति होगा ना, वो भी इसको कर सकता है। अभी आप पागल आदमी को बोलेंगे कि आप योग करो तो कर सकता है क्या वो? नहीं नहीं योग का सबसे बड़ा प्रक्रिया है, योग तो सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है। तो पागल आदमी को बोलेंगे आप कर सकते हो क्या, हम आपको सिखाएंगे, वो नहीं सीख सकता है। अभी बच्चा आएगा उसको बोलेंगे इतना बड़ा ग्रंथ है, ये वेद है ऋग्वेद, इसको पढ़ो, तो बच्चा कैसे बोलेगा, गेंद कहाँ है, गेंद वो पूछेगा, गुल्ली डंडा किधर है वो पहले पूछेगा आपको। है ना, तो अपने को कैसा चाहिए, अपने को ऐसी प्रक्रिया चाहिए, ऐसी कोई पद्धति चाहिए जो सब लोग कर सकते हैं, सब उम्र के लोग कर सकते हैं, सब देश के लोग कर सकते हैं, सब भाषा बोलने वाले कर सकते हैं, गरीब लोग कर सकते हैं, अमीर लोग कर सकते हैं, काले लोग कर सकते हैं, गोले लोग कर सकते हैं, गांव के कर सकते हैं, शहर के भी कर सकते हैं, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। हाँ, जो बीमार है वो भी कर सकता है, मन का बीमार, शरीर का बीमार भी कर सकता है, और जो अच्छा है शरीर का वो भी कर सकता है। ऐसा हमको एक तकनीक चाहिए जो हर समय, ऐसा भी नहीं कि भाई सुबह ही कर सकता है, शाम को नहीं कर सकता है, ठंडी में नहीं कर सकता है, गर्मी में कर सकता है, हर सीजन में कर सकता है, सुबह शाम कर सकता है, सर्दी गर्मी हर ऋतु में कर सकता है, ऐसा कोई नुस्खा ढूंढ के निकालो कि किसी भी समय उसको कर सकता है, तो वो एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलेंगे हरे कृष्णा है क्यों, हम कहें बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, लेकिन बोलो और बोलना चाहिए क्योंकि भगवान का नाम है ये। ये भगवान का नाम कैसा है, सारे शास्त्रों का सार उसमें समाया हुआ है, जितना भी शास्त्र लिखा हुआ है उसमें क्या क्या समझना है आपको, समझना चाहिए, वो सारा सार जो है इस नाम में छुपा के रखा हुआ है। जैसे हम लोग कैप्सूल खाते ना, कैप्सूल खाते ना, बाहर लिखता है लाल और पीला कैप्सूल लिखता है, लेकिन कैप्सूल वो नहीं होता है, उसके अंदर की दवा होती है, जब आप उसको खाते हो ना पेट में तो पहले उसका कवर जो है ना वो पिघल जाता है और जो दवा असली जो है ना वो बाहर निकलती है, फिर उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ता है। आप तो सर नर्स और डॉक्टर हो, आप जानते हो ना इसको, कैप्सूल खाली आवरण होता है उसका, इस कवरिंग ओनली। उस तरह से ये दवा जो है वो हरिनाम है, एनेची औषधि नाशो बारो लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी, ये क्या है, ये सर्व औषधि है, ये हर तकलीफ के लिए, हर कष्ट के लिए, हर व्यक्ति की पीड़ा के लिए मुक्त करने के लिए ये साधन है। और भगवान ने क्या कहा है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस, मुझमें जितनी शक्तियाँ हैं वो सब मेरे मेरे नाम में अर्पण कर दी हैं, मैं स्वयं भी नाम में अपने आप को अर्पण कर चुका हूँ। क्योंकि कलयुग में और कई लोग कुछ नहीं कर नहीं सकते कुछ। कलयुग में लोगों के पास ध्यान करने की ताकत नहीं है। क्या ध्यान करेगा, 50 जगह 50 चैनल चल रहे हैं टीवी में, वो क्या ध्यान करेगा। कभी ये सीरियल अभी आज आज देख रहा है, कभी उसको बंद कर रहा है, दूसरा चैनल चालू कर रहा है, वहाँ पर कुछ पति पत्नी को छोड़ के जा रहा है वो देख रहा है, यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिवोर्स हो रहा है, तो वो कहाँ ध्यान करेगा। 50 चैनल तो एक रिमोट उसके हाथ में है, बाहर जाएगा तो उसके पास 50 काम है, कितनी चिंताएं हैं, बच्चों को एग्जाम है, क्रिकेट मैच भी देखना है, एग्जाम भी चल रहा है। इतनी परेशानी में आप बोलेंगे एक जगह बैठ के ध्यान करो, बोलता है इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता, आप करो। ऐसे बोलेगा वो। और कोई बोलेगा कि नहीं नहीं सब कुछ छोड़ दो, धन दौलत परिवार सब त्याग करो और जंगल में जाके रहो और अकेला अकेला विरक्त होकर, तो आप क्या बोलेंगे, आप में से कोई हाथ ऊपर करेगा क्या? मैं तो नहीं करूँगा। क्योंकि इम्पॉसिबल है, मुझे परिवार से आसक्ति है, प्रेम है, मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, हाउ केन आई गिव अप एवरीथिंग एंड गो। कोई बोलेगा कि आपको मैं इतनी बड़ी किताब देता हूँ, एक साल में पूरी करनी है उसको, बोला सर अभी मैं 10वीं पास नहीं हुआ हूँ, बहुत साल से पढ़ रहा हूँ, ये किताब तो मेरे को 10 जन्म तक पूरी नहीं होगी, क्योंकि इतना कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, नो कॉन्सेंट्रेशन कि क्या लिखा है उसके अंदर, समझे, उसको समझाने वाला चाहिए, वो हम प्रश्न पूछेंगे, नहीं समझेगा तो पूछेंगे, बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, तो क्या करें क्या करूँ। अरे कुछ कल पढ़ा तो आज याद नहीं आता है, कितना लोगों को ऐसा अनुभव बताओ, सबने एग्जाम दिया ना आप लोगों ने, हाँ ANM GNM, अरे कल पढ़ेगा तो आज याद नहीं आता है, जब एग्जाम के लिए पढ़ा था वो भी आज याद नहीं आ रहा है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्यों, जो कलयुग है, कलयुग के अंदर मेमोरी नहीं है किसी को, कुछ भी याद दे रहता है, और लाइफ सबका कमती कमती होते जा रहा है। पहले लोग तो 80 साल तक जीते थे, अभी आजकल सेंचुरी हो गए, पेपर में फोटो आता है कि नहीं आता है, इनके 100 साल पूरे हो गए, इंग्लैंड में ऐसा होता है, कोई भी 100 साल पूरे किया ना उनका पेपर में फोटो आता है कि 100 साल तक जिया, मतलब उसका ताली बजाते हैं। लेकिन एक ज़माना था सब लोग 100 साल जीते थे, तो कोई पेपर में फोटो नहीं आता था, क्यों आज आ रहा है, क्योंकि आज 100 साल तक कोई जीता नहीं है, लाइफ कम 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 होते जा रहा है। आज क्या बात सुनने को आती है, 25 साल के आदमी को हार्ट अटैक आया और मर गया, वो शादी भी नहीं होती उसको, अभी अभी नौकरी लगा था, फुल हार्ट अटैक आया और मर गया। ये मेरे बचपन की कहानी है, बचपन में मेरे नेबर के घर के अंदर एक जवान लड़का 24 साल के अंदर शादी के पहले ही उसको हार्ट अटैक आके मर गया, वो जब बाकी बुजुर्ग लोग तो जवान थे, जिंदा थे। कहने का मतलब क्या है, आयु भी कम कम होते जा रही है, मेमोरी भी नहीं है, सद्गुण तो दूर ही रहे, सद्गुण तो कहाँ मिलेंगे, अभी ट्रेन में किसी को धक्का लगाए तो झगड़ा करते हैं, सद्गुण कहाँ पर है ना, कितने बड़े आदमी होंगे तो हु केयर्स, ट्रेन में आए तो धक्का दे के आपको भगा देते हैं और गाली भी देते हैं ऊपर से, सद्गुण है ही नहीं, सब जगह झगड़ा है। ऐसे समय पर भगवान बोलते हैं कि अरे मेरे इन बंदों को मेरे पास वापस लाना है तो कुछ करना चाहिए, ऐसा उपाय चाहिए जो हर समय कोई भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी डिफिकल्ट मार्ग देना बहुत अच्छा नहीं है, अगर बहुत डिफिकल्ट मार्ग देंगे तो लोग आएंगे कैसे, टिकट निकालेंगे नहीं, रास्ता बहुत कठिन है बोलेंगे, रास्ता आसान कर दिया तो बहुत लोग टिकट निकालेंगे उसका। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब मैं मेरा नाम सबको देता हूँ और ऐसा बनाता हूँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, आसानी से ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं स्वयं जाऊँगा और स्वयं जाकर इस युग में इस युग से मुक्त होने के लिए जो मार्ग है वो अपने हाथ से बांटूंगा। इसलिए कृष्ण भगवान जो है वो स्वयं कलयुग में अवतार लिया उन्होंने, क्या बोल के अवतार लिया, गौरांग महाप्रभु। आप सब लोग बोलेंगे गौरांगा, नहीं सब लोग ने नहीं बोला, बोलो गौरांगा, गौरांगा। गौरांगा मतलब है जिनका वर्ण गौर है, मतलब जो गोरे रंग के हैं, जिनका अंग जो है गोरे रंग का है, यानी कि स्वर्ण जैसा है, चमकता हुआ, जैसे ये सूरज की किरण आ रही है ना उसका वैसा रंग है उनका, इसलिए उनका नाम है गौरांगा। जब वो कृष्ण थे तो कौन सा रंग था उनका, हाँ किसको पता है पीछे कौन सा रंग था कृष्ण का, नीला रंग था, है ना, कैसा रंग था अगर याद रखना है आपको, अब आसमान को देखिए, जो आसमान का रंग है वही कृष्ण का रंग है। जब बादल आएंगे, बरसात के दिन आएंगे ना, तो जो बरसने वाला बादल होता ना, अभी बरसने वाला है, वो रंग भगवान का था, कृष्ण का। लेकिन इस युग में वो गौर वर्ण में आए, इसलिए उनका नाम पड़ा गौरांगा। तो गौरांगा महाप्रभु के रूप में वो आए, और उन्होंने जो सबसे बड़ी भेंट है, जो जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसके ऊपर जीव के लिए कोई और भेंट प्राप्त नहीं हो सकती है, वो भेंट उन्होंने भगवान के नाम के महामंत्र के रूप में सबको दिया। और कैसे दिया? दीन हीन याता चीलो हरि नाम उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मधाई। मतलब उन्होंने देखा भी नहीं कि ये पापी है, ये पुण्यवान है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हाँ ये काला है, गोरा, ये ब्राह्मण है और ये शूद्र है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। अच्छे कुल का है, अमीर घर का है, कोई भेदभाव नहीं किया। दीन हीन मतलब जो सबसे गिरे हुए भी है, उनको भी भेदभाव नहीं किया, सबको दिया उन्होंने। तो आप क्या बोलेंगे, आपको MBBS करना है, 12th में पहले इतने मार्क लेके आओ, CET में इतना नंबर आना चाहिए, तो ही मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिलेगा। मतलब सब लोग जा नहीं सकते उसके अंदर, है ना, कुछ ही लोग जाएंगे, सबको एंट्री नहीं है, वैसा नहीं है इनका काम। इस युग में, इस युग से अगर आपको मुक्त होकर भगवान के धाम जाना है, तो ऐसा उन्होंने एक टिकट दे दिया सबको कि सब लोग खरीद सकते हैं उसको, एनीबडी कैन टेक इट। क्या प्राइस है उसकी? श्रद्धा मात्र मूल्य दान, बस। श्रद्धा का मूल्य अगर आपके पास में है, तो उतना ही मूल्य देकर आप उसको खरीद सकते हो, भगवान का नाम। मतलब कोई पैसा नहीं लगता है जिसके अंदर श्रद्धा है। आप बोलेंगे अरे हम तो वार्ड बॉय है, हम तो मौसी है, हम तो नर्स है, हमको तो नॉलेज नहीं है, वो तो भक्ति भक्ति आप ही कर सकते हो, आप तो पढ़े लिखे हो, ऐसा बोलने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर, कोई चांस नहीं है आपको ऐसा बोलने का। तो सबके लिए बना के रखा है वो, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, गटर का आदमी भी उठा के ले सकता है उसको, केवल श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा से वो नाम पुकारेगा, तो ऐसे कहते हैं कि नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और वो नाम लेते ही अपने जिबान पर भगवान नृत्य करेंगे, आपके कान से ध्वनि से प्रवेश करेंगे ध्वनि के रूप में, और हृदय पे जाकर नृत्य करेंगे, और आपका हृदय साफ कर देंगे, पूरा मैल जो है पापों का पुण्यों का सब नष्ट कर देंगे, और उस मैल को नष्ट करके प्रेम भक्ति का उदय करेंगे उसके अंदर। ये स्वयं भगवान दे रहे हैं, हाँ किसी एजेंट को, किसी देवता को भेजा नहीं उन्होंने, जा रही भाई इंद्र जाके आ, जरा मेरा भेंट उनको दे के आ, पार्सल दे के आ मेरे को, नहीं ऐसा बताया उन्होंने। जब कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, तो बोलता है कि मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं खुद जाऊँगा। जैसे परसों मेरा भाई जो है ना, चेंबूर में रहता है, बहुत दूर है यहाँ से वो, मेरा रोड से, मेरे मम्मी का पैन कार्ड उसके पास था, तो मुझे उसने बोला कि कुरियर कर दूँ क्या, तो मैंने बोला देखो मम्मी का पैन कार्ड है, गुम हो जाएगा कुरियर में तो कहाँ ढूंढेगी उसको, तुम बैठ के कुरियर से मत भेजो, खुद जाके इधर आके मम्मी को दे के जाओ, क्योंकि वो महत्वपूर्ण था, मेरी बात उनको जची, और वो चेंबूर से निकल के संडे को बहुत दूर तक यात्रा करके मेरे घर पे आके वो मम्मी का पैन कार्ड दे के आए, दे के लौट गए। मतलब जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है, तब आदमी खुद निकलता है उसको। शादी घर में होगी तो आप बहुत लोगों को पोस्ट से भेज देंगे इन्विटेशन कार्ड, लेकिन कुछ लोगों को खुद जाके देंगे, नहीं नहीं इनको तो मुझे खुद जाके इनवाइट करना पड़ेगा, घर पे जाके फ़ोन करके जाऊंगा, इनवाइट करके आऊंगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो बात महत्वपूर्ण है, सामान्य नहीं है, सिंपल नहीं है, इसके हम उसको कुरियर नहीं कर सकते। और कभी कभी क्या करते हैं, SMS कर देते हैं, प्लीज़ कम फॉर मैरिज, जगह ये है, लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, सर आपको फ़ोन कर रहा हूँ, SMS भी दिया है, एड्रेस दिया है, लेकिन सर फ़ोन भी कर रहा हूँ, आपको आना है, पक्का आना है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं उस व्यक्ति को कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए आपको फ़ोन किया जा रहा है, या आपके घर पे हम आ रहे हैं इनवाइट करने के लिए। वैसे ही भगवान अपने इंद्र आदि देवता को भेज सकते थे कि जा भाई इंद्र तो बड़ा आदमी है, देवताओं का राजा है, ये ले कि हरे कृष्ण महामंत्र लो और सबके लिए उनके लोगों को बांट के आओ, नहीं तो मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद अवतार लूँगा, कैसा अवतार लूँगा, भगवान बनकर नहीं जाऊँगा, मैं मेरा भक्त बनकर जाऊंगा, रूप बदल लूंगा, मैं भक्त बनूंगा अपना खुद का, और वो मेरा नाम लेकर लोगों को बांट के आऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा साथ में कि इसका जप कैसे करते हैं, ये भक्ति कैसे करते हैं, ये भी खुद जाके दिखा के आऊंगा। तो वो जो कृष्ण भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, उनका जन्मदिन इस महीने के 27 तारीख को है, है ना, बड़ी भाग्य की बात। ये सब लड़कियां अभी इसी महीने में ज्वाइन हो गई। उनका सबसे पहला फेस्टिवल कौन सा होगा? गौर पूर्णिमा। आने वाला फेस्टिवल जो है, जो आपको मिलने वाला है, वो नाम है उसका गौर पूर्णिमा, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था। और जन्म कैसा हुआ था? पूर्णिमा के दिन। आप बोलेंगे अच्छा दिन है, बहुत इतना बढ़िया दिन है, पूर्ण चंद्रमा, शुभ मानते हैं उसको बहुत। लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण था। आप बोलेंगे अरे एकदम अशुभ हो गया, पूरा एकदम पूरा अशुभ हो गया। लेकिन गौरांग महाप्रभु, उनका और एक नाम चैतन्य महाप्रभु भी है, चैतन्य, वो पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन में क्यों आए वो? क्योंकि चंद्र ग्रहण को हमारे यहाँ अशुभ मानते हैं। चंद्र को हम देखते नहीं हैं, आकाश की में भी देखते नहीं हैं, उपवास रखते हैं, सब खाना घर का या तो ख़त्म करते हैं तो फेंक देते हैं उसको, या जो बचा हुआ उसके अंदर तुलसी, पानी के अंदर तुलसी डाल के रखते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते रहते हैं, या तो नदी में जाके स्नान करते हैं, नदी में अपने आप को डुबा के रखते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, ऐसे पवित्र नदियों में जाकर अपने आप को डुबा के रखते हैं और नाम जपते रहते हैं जब तक ग्रहण छूटता नहीं है। ग्रहण लगने के पहले प्रवेश करते हैं गोदावरी में और ग्रहण समाप्त होने तक उधर ही बैठते हैं और जल के अंदर माला लेकर हरे कृष्णा, हरे राम, जय राम, श्री राम, जय राम करते रहते हैं। जब वेद छूट गए तो स्नान पूरा करके बाहर निकल के फिर घर जाके भोजन करते हैं। करते हैं ना आप लोग? सब लोग नहीं करते होंगे लेकिन बहुत लोग करते हैं। हाँ, हम तो करते हैं ऐसा। तो उस समय चंद्र ग्रहण था। जितने भी लोग थे मायापुर में, इनका जन्म जो है वो मायापुर में हुआ, नवद्वीप धाम, वो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी बहती है, उसके किनारे में ये नवद्वीप है। आप लोगों में से बहुत तो यात्रा करके आए ना अभी? कितने लोग यात्रा करके आए? हरे कृष्ण, इसमें कोई नहीं शायद। हाँ, अभी हमारे हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग अभी अभी यात्रा करके आए हैं लौट के। तो चंद्र ग्रहण के दिन जितने भी गांववासी थे वो सब लोग गंगा नदी के अंदर थे, सब लोग, एवरीबडी। संध्या के समय जब चंद्र ग्रहण शुरू ही होने वाला था तब जितने भी लोग थे, बाल बब अबाल वृद्ध, जितने भी बड़े, औरतें, लड़कियां, माताजी, सब लोग जल के अंदर थे और सब लोग कृष्ण कृष्ण गोविंद, कृष्ण कृष्ण गोविंद पुकार रहे थे। ग्रहण का परिणाम हमारे पर नहीं होना चाहिए इसलिए भगवान का नाम पुकार रहे थे। और जो मुसलमान थे वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए चिढ़ाते चिढ़ाते वो भी बोल रहे थे कृष्ण कृष्ण गोविंद। ये देखो सब लोग हिंदू लोग पुकार रहे अपने भगवान को, तो चिढ़ाने के लिए वो भी पुकार रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग पुकार रहे थे, कोई दिल से पुकार रहा था, कोई चिढ़ाने के लिए पुकार रहा था। उसी समय गौरांग महाप्रभु ने जन्म लिया। क्या अर्थ है उसका? मैं आगे जाकर क्या करने वाला हूँ ये दिखाने के लिए उस समय जन्म लिया। आगे जाकर क्या किया उन्होंने? पूरी दुनिया के लोगों को भगवान का नाम लेकर बेहोश कर दिया उन्होंने, आनंद से मशगूल कर दिया। ये उनका जीवन कार्य है कि मैं इस अवतार में लोगों से समर्पण नहीं चाहूँगा, कंडीशन डालूंगा नहीं उनके ऊपर, ऐसा ही करना चाहिए, विरक्त होना चाहिए पहले, फिर मैं दूंगा आपको कुछ देना है। पहले क्या बोलते थे वो? सर्वधर्मम परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ अर्जुन, फिर मैं तुमको मोक्ष दूंगा। बहुत बड़ी कंडीशन है ये। तो बोलते इस अवतार में कोई कंडीशन रखूंगा नहीं, दीन ही न यथा चिलो हरिनाम उद्धारी लो, हरिनाम देकर सबका उद्धार करूंगा मैं। कोई आएगा सबको दे दूंगा, कोई पूछूंगा नहीं तुम्हारा जात क्या है, पात क्या है, नाम क्या है, पैसा कितना है, पढ़ा कितना लिखा है, कुछ नहीं पूछूंगा। जो श्रद्धा से आएगा उसको हरिनाम दे दूंगा और देते ही तुरंत उसके हृदय में कृष्ण भक्ति प्रेम को जागृत करूंगा। जो जन्म जन्मांतर तक लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर पाप नष्ट होते हैं, धीरे धीरे मोक्ष मिलने की योग्यता होती है, उसके बाद में धीरे धीरे प्रेम होता है, फिर भगवान के धाम में जा सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत लंबे लंबे स्टेप्स हैं। जब मैं आऊँगा तो कोई स्टेप्स नहीं होंगे, सब स्टेप्स को एक ही स्टेप बना दूंगा। एक स्टेप के अंदर सबके हृदय में प्रेम जागृत करूंगा। ये कृपा है भगवान की, जो किसी भी जन्म में, किसी भी युग में नहीं होती है, ना द्वापर में होती है, ना सत्ययुग में होती है, ना त्रेतायुग में होती है, ना रामचंद्र प्रभु ने ऐसे किया है, ना नरसिंह भगवान ने ऐसे दिया है, ना वराह भगवान ने दिया है, ना वामन देव ने दिया है, ना राम भगवान ने दिया है, ना किसी और अवतार ने दिया है। स्वयं कृष्ण ने भी कंडीशन डाला है, सर्वधर्मम परित्याज्य, सब धर्मों को त्याग करोगे ना, विरक्त हो जाओगे और मेरे शरण में आओगे, तब मैं तुम्हें प्रेम की बात नहीं किया है, तब मैं मोक्ष दूंगा, मोक्ष इच्छामि मां शुचा, ऐसे कहा है। प्रेम इच्छामि मां शुचा नहीं बताया, प्रेम उन्होंने केवल गौरांग महाप्रभु के अवतार में दिया है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर आज हमको हरिनाम मिला हुआ है, समझो आप लेते हो कि नहीं होते दूसरी बात है, लेकिन आपको मिला हुआ है, आपका परिचय हो चुका है, इसका मतलब क्या है, पिछले जन्मों में आप लोगों ने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पिछले जन्मों में आपने सब दान पुण्य तीर्थ यात्रा कर्मकांड सब कर लिया है, पिछले युगों में आपने बहुत सारे भक्तों का सेवा भी किया है, इसके फल के स्वरूप आपको इस जन्म में भगवान के नाम का परिचय हो रहा है, क्योंकि वो पीएचडी है, वो लास्ट स्टेप है, वो उसी को मिलता है जो ये सब पहले स्टेप्स कर चुका है पिछले जन्मों में। तो हम लोग क्या समझते हैं, जब आपको देखते हैं हम और देख रहे हैं कि आप भगवान का नाम ले रहे हो, तो हम ये समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में ये सब कुछ कर लिया है, इसलिए उसके फल के रूप में इसको इस जन्म में भगवान का नाम उसके मुँह से निकल रहा है। नहीं तो भगवान का नाम मिलने पर भी लोग मुँह से उसका उच्चारण नहीं करते हैं। आप देखो कभी जाओ प्रोग्राम में, हम जाते रहते हैं, लेक्चर देते हैं, कीर्तन करते हैं, केवल आधे लोग बोलते हैं, आधे लोग चुप बैठ जाते हैं, ऐसे देखते हैं खाली, बस कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, और कुछ लोग खाली होंठ हिलाते, खाली शब्द निकलता नहीं उनके मुंह का। क्यों ऐसा? क्योंकि जिसके कंधे पर अनेक जन्मों के पापों का भार है, उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है, ये हकीकत है। हम किसी का बुरा नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे भी लागू है। जिसके पिछले जन्मों के पापों का भार नष्ट हो चुका है, उसी के मुंह से भगवान का नाम निकल सकता है। और अगर कोई प्रेम से पुकार रहा है, हृदय से पुकार रहा है, इसका मतलब सब नष्ट हो चुका है उसका, अभी खाली प्रेम बाकी है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर पापों का भार कंधे पर आपके है भी, ठुकरा दो उसको और जोर से पुकारो भगवान का नाम, क्योंकि भगवान का नाम पुकारते ही सारे पाप भाग जाते हैं। एक शाम का समय है, एक बड़ा बरगद का पेड़ है, आप जाकर एक फटाका फोड़ दो उस नीचे, तो क्या होता है बताओ? एक बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसके अंदर हजारों पंछी बैठे हुए हैं, और आप एक नीचे बॉम्ब ऐसा फोड़ देते हो, फटाका होता है दिवाली का, फोड़ देते हो, तो क्या होता है? सब पंछी उड़ जाते हैं, एक ही ठॉक होते ही सब पंछी उड़ जाते हैं, एकदम ऐसे हजारों पंछी उड़ते हुए नजर आते हैं। वैसे ही एक बार हरि नाम का उच्चारण करने से आपके शरीर रूपी वृक्ष पर जितने पाप के पंछी बैठे हैं वो सब उड़ जाते हैं, इस पर विश्वास होना चाहिए आपको। एक बार लेने से, आप बोलेंगे उसके बाद में क्या होगा दूसरी बार लेने से, एक बार तो लिया तो सब पंछी उड़ गए, आगे क्या होता है? आगे जब ये पंछी उड़ जाएंगे तो स्वच्छता निर्माण होगी, पाप नष्ट हो जाएंगे ना सब, तो भगवान का प्रेम जागृत करने का समय चालू हो जाएगा, फिर अगले हर नाम से थोड़ा थोड़ा प्रेम उत्पन्न होगा, और एक जीवन भर नाम लेते रहेंगे, प्रेम से पुकारते रहेंगे, तो फिर दिल जो है वो प्रेम से भर जाएगा। जब दिल भगवान के लिए प्रेम से भर जाएगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर भगवान दूर नहीं आपसे। इसलिए भगवान का नाम जब उच्चारण करते ना, संकोच नहीं करना चाहिए। जब किसी का झगड़ा होता है तो जोर जोर से बोलने में संकोच करते क्या हम लोग? किसी को बोलना पड़ता है क्या, जोर से बोलो और जोर से बोलो, ऐसा बोलते क्या? वो तो पहले से ही जितना जोर से बोल सकता है उतना बोलता है वो झगड़े में। झगड़े में किसी को बोलना नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, होता है ना ऐसे? ट्रेन में झगड़ रहे हैं, दो औरतें झगड़ रही, आदमी झगड़ रहे हैं, आप बोलेंगे इतना कम क्यों आवाज से बोल रहे हैं, जोर से बोलो, ऐसा बोलना पड़ता है कभी क्या? नहीं, वो तो दिल से हृदय से जितना शक्ति उसके अंदर है उतना जोर से बोलता है वो। लेकिन जब भगवान के नाम को पुकारने का समय उसी की लाइफ में आता है तो उसका मुँह से शब्द नहीं निकलता है, दुर्भाग्य ऐसे को कहते हैं। दुर्भाग्य मतलब जहाँ पर नहीं चिल्लाना चाहिए वहाँ लोग चिल्लाते हैं। वो फर्स्ट क्लास के दबाव में जाएंगे ना आप विरार ट्रेन में सुबह, तो फर्स्ट क्लास दबाव में बहुत गुजराती लोग बैठते हैं, बिजनेसमैन लोग, शेयर मार्केट वाले, इतना जोर जोर से बात करते हैं, ये इसको रुपया, इसको मार्केट, इतना शेयर, जोर जोर से बोलते हैं, मॉल नहीं भेजा, ऐसा वैसा, इतना जोर से बोलते हैं, और भगवान के नाम को पुकारने का समय आएगा तो चुप हो जाते हैं एकदम। दुर्भाग्य ऐसे को कहते हैं। जिस चीज में चिल्लाना चाहिए हृदय से, नाभि से, पेट से चिल्लाना चाहिए, उसमें नाम ही आवाज ही निकल ले रही है, और जहाँ पर नहीं चिल्लाना चाहिए, चिल्लाने से नुकसान होगा उसमें, तो वहाँ चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। उनको पता है ना, तुम एक बोलोगे मैं कुछ बोलूँगा, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर आओ जोर से कुछ बोलूँगा, फिर आओ कुछ जोर से बोलेंगे, क्या होगा? नुकसान दोनों का। ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही, लेकिन नुकसान भी होगा आगे जाके। तो क्योंकि कहने का तात्पर्य क्या है, अगर आपको इस जन्म में ये भगवान का नाम ये न के न प्रकार न किसी भी तरह से, समझो अभी ये लोगों को ANM का जॉब यहाँ मिला है, उस बहाने यहाँ मिल रहा है उनको, कोई लोग सत्संग में गए गांव में, गांव में मेले में गए थे, वहाँ पर सत्संग था, वहाँ पर कीर्तन चल रहा था, वहाँ पर परिचय हुआ, किसी का और किसी बहाने हुआ, किसी ने बच्चे का नाम ही गोविंद रखा तो वो दिन भरत गोविंद गोविंद कर रहा है, किसी भी रूप से भगवान का नाम का परिचय हुआ तो वहीं से पकड़ के उसको आगे चलना चाहिए। इसलिए पुराने ज़माने में अपने बच्चों का नाम भगवान का रखते थे, ताकि उठते बैठते उसका नाम पुकारते रह गए। अरे वो था ना अजामिल, बड़ा पापी था वो, जन्म से ब्राह्मण था, बहुत पाप किया, वेश्या का गमन किया उसने, शराब पिया, लूटमार किया, लेकिन बच्चे का नाम नारायण रखा था उसने। और 80 साल में इतने पाप करने के बाद जब मृत्यु का समय आया ना, तो नारायण का नाम पुकारा उसने, डर के मारे। भगवान को नहीं पुकारा, बालक को पुकारा, लेकिन बाय द वे बालक का नाम नारायण था, क्योंकि बाय द वे बालक का नाम नारायण था, यमदूत भाग गए, वो नारायण आवाज़ सुनकर भागना पड़ा, मतलब भगा दिया गया उनको, विष्णु के दूत वहाँ पर आ गए नारायण नाम पुकारते ही। इसलिए भगवान का नाम पुकारते हैं, क्योंकि भगवान का नाम पुकारने से यमदूत भाग जाते हैं और विष्णु के दूत आते हैं, जो नहीं चाहिए वो भाग जाते हैं, जो चाहिए वो आ जाते हैं और हमको बचाते हैं। हमारी माता जी बचपन में कहती थी, जब कभी डर लगेगा ना तो राम 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 कहने का। कितने लोगों को माता ने बताया आपको ऐसे? हाँ, सब, बहुत सारे माताओं, अभी आजकल की माताओं खुद को पता नहीं तो बच्चों को क्या बताएगी, लेकिन हमारे बचपन में हमारे माता ने हमको बताया था, जब डर लगता है तो राम का नाम लो, क्योंकि राम का नाम लेने से डर भाग जाता है। तो मूर्तिमान डर होता है ना, वो व्यक्ति भाग जाती है, डर टिकता ही नहीं है भगवान के नाम के सामने, डर, भय, मृत्यु, यमदूत, ये सब भाग जाते हैं, वो खड़े होते नहीं वहाँ पर, टिक नहीं सकते वो। जैसे उजाला होने से अंधेरों को नोटिस देनी पड़ती नहीं है, अभी अंधेरा आप चले जाओ, उजाला आ गया है, नहीं, उजाला आया मतलब अंधेरा गया, सिंपल। उसी तरह से भगवान का नाम अपने जीवन में आने से आनंद का प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, दुख नष्ट हो जाते हैं, कष्ट मिट जाता है, और हम कितने भी कष्टमय समय में होंगे फिर भी हम आनंद में आ सकते हैं तुरंत ही। ऐसे कोई लोग यहाँ बैठे हैं जिनको आनंद नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसे है कोई? हाथ ऊपर करो। जिनको सुख नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, दुख पसंद है आपको, ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? कोई हाथ नहीं ऊपर कर रहा है यार, क्या बात है? किसी को दुख नहीं चाहिए ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? नहीं है, कोई नहीं। मतलब आप लोग बुद्धिमान हो, आप जानते हो कि दुख अच्छी चीज़ नहीं है और सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और भगवान का नाम लेने से आनंद की गारंटी है। कष्ट और तकलीफ और समस्या होने पर भी जो भगवान का नाम लेता है वो हमेशा आनंदी रहता है, उसके चेहरे पर रौनक रहती है, उसके चेहरे में प्रकाश रहता है। उस व्यक्ति को मिलने से आपको भी आनंद का अनुभव होता है, ऐसा भगवान का नाम का शक्ति है। समझो आपके जेब के अंदर एक बल्ब रखा है और चालू है वो बल्ब, तो आप छुपा सकते हैं क्या उसको? आप कितना भी जेब के अंदर रखेंगे तो उसका प्रकाश फैलेगा कि नहीं फैलेगा? उसी तरह से भगवान का नाम जो लेता है वो कितना भी छुपाएगा तो भी उसके चेहरे से वो खुशी, आनंद और प्रकाश दिखाई पड़ेगा आपको। इसलिए हमको भगवान के नाम लेने वालों का संग करना चाहिए, और आपको जॉब के बहाने वो संग मिला है तो ले लो, छोड़ो मत उसको, क्योंकि अनंत जन्मों के कष्ट का प्राप्ति है ये, आपने बहुत जन्मों तक मेहनत किया हुआ है। इस बिल्डिंग के अंदर जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं किया है वो इस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, ये हमारी गारंटी है। क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग में पहले घुसते ही संत का दर्शन होता है, तुरंत तुलसी का दर्शन होता है आते ही, और तो थोड़ा अंदर गए तो फिर हरिनाम कान में पड़ता है, हरे कृष्णा यहाँ वहाँ देखेंगे तुरंत भगवान का चित्रपट दिखाई पड़ता है, यहाँ देखेंगे तो दिखता है, वहाँ देखेंगे तो दिखता है, मतलब आँखों के लिए, कान के लिए, सब जगह के लिए भगवान का नाम का प्रसाद मिल रहा है आपको। थोड़ा भूख लग गई, कैंटीन में गए, अरे क्या है रे आज मेन्यू में क्या है, गर्म क्या है, तो बोलेगा मसाला डोसा है, उत्तप्पा है, सांभर है, इडली है, वो कुछ भी आप खाओगे तो वो कृष्ण का प्रसाद है। वो आपको पता नहीं होगा शायद, वो किचन के अंदर एक मंदिर है, उसके अंदर जो बनता है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, वो सब उनको भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में बाहर निकालते हैं, उसके पहले बाहर निकलता ही नहीं है। इसका मतलब भूख लग गई, कैंटीन में गए तो कृष्ण का प्रसाद आपको मिलेगा। चलो पेशेंट भूखे भर्ती हो गए, आप पेट में दर्द है आपके, आपको एडमिट किया गया है, वो बोलने का नमक नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, मीठा नहीं खाने का, लेकिन आपको अगर लिक्विड डाइट लेने का है, अरे वो लिक्विड डाइट भी यहाँ पर भगवान को भोग लगाकर तुलसी डालकर प्रसाद के रूप में मिलता है आपको। आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अभी इतना सारा भगवान का प्रसाद आपको मिल रहा है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों के पुण्य की फलश्रुति है, ये फल है उसका। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ भर्ती नहीं होंगे, कहीं और भर्ती हो जाएंगे। और अगर यहाँ आपको भगवान ने पहुँचाया है, मतलब आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल आपको देने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। बीमारी का बहाना, लेकिन भेजा है उनकी कृपा देने के लिए। ये बात जो समझेगा वही भाग्यवान है। अगर ये बात समझ में नहीं आएगा यहाँ पर जॉब लेने के बाद भी, तो आपका दुर्भाग्य है ये। इसलिए अपना काम करते करते यहाँ पर जो भी भगवान के विषय में प्राप्ति हो रही है उसको ले लो, उसमें लेने में कंजूसी मत करो, कोई चार्ज नहीं इसके लिए। हाँ, मेरे प्रवचन का कोई चार्ज है क्या, कोई फी भर के अंदर आए इधर आप, नहीं आए ना, ये सब फ्री में है। क्योंकि भगवान भी जब अपना नाम देते हैं तो गोलोक से पैसा लेके भेजते नहीं है, गोलोक से यहाँ पर खुद आते हैं, खुद का टिकट निकाल के आते हैं और आपको फ्री में बांटते हैं यहाँ पर। वो खुद चार्ज नहीं लेते हैं। अपना दर्शन का मंदिर में कोई चार्ज है क्या, अभी गिरधारी मंदिर में जाओ दर्शन करो, कोई फी है क्या वहाँ पर, नहीं है। चरणामृत फ्री है, दर्शन फ्री है, थोड़ा रुकोगे कथा सुनोगे उसका प्रसाद भी फ्री है, शाम को जाओगे तो दाल चावल का प्रसाद मिलता है जगन्नाथ जी का, वो भी फ्री है, संडे को जाओगे तो पूरा खाना मिलेगा आपको, वो भी फ्री है। भगवान कभी भी चार्ज नहीं करते, तो हम कैसे चार्ज करेंगे, उनके द्वारा फ्री में हमने लिया है इसलिए आपको भी फ्री में दे रहे हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति है आप सोचो जरा। हाँ, हम लोग जॉब के बहाने यहाँ पर आए, कोई मरीज बन के आए तो कोई मरीज के ड्रेस में बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहाना कुछ भी हो, अगर लाभ भगवान के नाम का मिल रहा है तो ले लो उसको, उसमें कंजूसी मत करो लेने में। हम लोग सब देने में कंजूसी करते हैं, लेकिन कुछ लोग लेने में भी कंजूसी करते हैं। कम से कम ये लेने में कंजूसी मत करो, बाकी सब कुछ मत लो, संकोच करो, लेकिन भगवान का नाम लेने में और जबान से पुकारने में कंजूसी मत करो। ये जीवन उसी के लिए दिया गया है, तो कुत्ता बिल्ली पंछी जो है इस नाम को नहीं पुकार सकता है वो, आप लोग पुकार सकते हो, पागल भी आदमी होगा तो पुकार सकता है वो, क्योंकि वो मनुष्य है, मनुष्य होने पर, पागल होने पर भी मनुष्य है वो, इसलिए वो पागलपन में क्यों ना हो भगवान का नाम पुकार सकता है। और उसका महिमा ऐसा है कि पागलपन में भी पुकारेगा ना, नशा में भी पुकारेगा तो भी उसका लाभ होगा, ऐसी वो एब्सोल्यूट परफेक्ट चीज़ है। तो गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सबका मन तैयार होना चाहिए कि अभी वो दिन आने वाला है जिस दिन भगवान ने सबसे बड़ी कृपा करने के लिए इस दुनिया में अवतार लिया था कलयुग के अंदर, वो वेस्ट बंगाल में, वहाँ आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि वो जगह है नहीं अभी, किधर लुप्त हो गई, ऐसा भी नहीं है। आज उस जगह पर 5 दिन के लिए रोज 24 घंटे का कीर्तन चल रहा है उस जगह पे, टीवी पर आ रहा है, टीवी पर मतलब इंटरनेट पे आ रहा है, सुबह 10 से रात को 10 तक चल रहा है, और रात को 10 के बाद वो बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद में रात भर वो जाकर कीर्तन करते हैं श्रीवास आंगन में, जहाँ पर स्वयं गौरांग महाप्रभु ने रात भर का कीर्तन आरंभ किया था, और रात भर वहाँ भक्त लोग कीर्तन करते थे, नाचते थे। उस जगह पर ये भक्त लोग जाकर 10 बजे के बाद फुल नाइट कीर्तन करते हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो कीर्तन करने से पूरे विश्व को लाभ होगा। जहाँ पर भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है, अभी आपने यहाँ पर 15 मिनट के लिए किया, जहाँ पर भी भगवान का नाम का कीर्तन होता है पूरे विश्व में उसका लाभ होता है, यहाँ तक कि देवताओं को भी उसका लाभ प्राप्त होता है। आप लोग बोलेंगे हम लोग ऐसा हाथ क्यों उठाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ उठाते इसलिए है कि हाथ उठाकर जिस दिशा में हाथ को उठा रहे हैं उस दिशा में जितने लोग हैं उन सब लोगों को हरि नाम का लाभ होता है, इसलिए लोग हाथ उठाकर उठाते हैं। एक उसका अर्थ ये भी है कि हाथ उठाना मतलब क्या, कोई बंदूक लगाया, हैंड्स अप, तब क्या करें, हैंड्स अप, शरणागति, आई सरेंडर, होता है ना ऐसे, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी हाथ ऊपर है मेरे, कि शरणागति का लक्षण भी है, इसलिए भी उठाते हैं। और जिस दिशा में हाथ उठाया हुआ है उस दिशा में जितने लोग हैं, स्वर्ग लोग, भूवर लोग, जन्म लोग, महालोक, तपस्या लोग, सत्य लोग, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, जितने देवता रहते हैं, उन सब को इस हरिनाम का लाभ होता है। इतनी पावर है उसके अंदर, परमानेंट पावर है उसके अंदर। आज पुकारेंगे तो कल भी उसका लाभ होगा। जिस रास्ते से हरिनाम संकीर्तन गुजरता है, पार्टी गाते हुए भगवान का नाम, उस रास्ते पे आप कल भी जाओगे तो भी आपको उसका नाम का लाभ मिलेगा, ऐसी महिमा है उसकी। इसलिए अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, रशिया में, सब जगह पर रथ यात्रा निकालते हैं हरिनाम का संकीर्तन करते हुए, क्योंकि इसकी महिमा ऐसी है कि साल में एक बार रथ यात्रा में कीर्तन करते हुए लोग जाएंगे, लेकिन साल भर उस रास्ते से जो भी गुजरेगा उनको इस हरिनाम का लाभ मिलेगा। कैसे, अभी आपने घर में वो एयर फ्रेशनर चलाया, हाँ, और आप लोग वहाँ एक घंटा थे, फिर आप चले गए, फिर भाई आया घर पे, तो उसको खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? अरे तो एक घंटे पहले बारा था, लेकिन खुशबू आएगी उसकी, क्योंकि वो रहती है वहाँ पर वैसी ही। उसी तरह से भगवान के नाम का जो प्रभाव है वो अनंत काल तक वैसे ही रहता है जहाँ पर वो पुकारा जाता है। अच्छा, आप लोग बैठे यहाँ पर, हरिनाम किया, कथा सुना, आप चले जाओगे, बाद में अकेले भी आप यहाँ पे आओगे ना, आपको बड़ा शांत और अच्छा लगेगा इस जगह पर, क्योंकि इस जगह में अनंत बार भगवान का नाम पुकारा गया है, अनंत बार कीर्तन किया गया है, कथाएं हो गई है भगवान के नाम की, दर्शन हुआ है, उत्सव हुए हैं, इसलिए जगह बहुत पावरफुल है। ये चार दीवारी का पेंटिंग पावरफुल नहीं है, ये चार दीवारी के अंदर बहुत बार भगवान का नाम पुकारा गया है। इसलिए आप लोगों को विनती करते हैं कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में रहते हो आप, कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पर रह के सूखे मत रहो। सूखा मतलब क्या, यहाँ भगवान का नाम मिलने पर भी आप नहीं ले रहे हो, ऐसे मत रहो यहाँ पर। अगर यहाँ पर आ चुके हो तो समझ जाओ कि आपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया है, उसका फल आपको मिल रहा है, उसको लेने में आपको चुकना नहीं चाहिए। सब लोग एक बार पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक और बार जोर से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। हर मंगलवार को आइए, और अभी इसके आगे भगवान का, गौरांग महाप्रभु का कथा सुनते रहिए हर मंगलवार को।